हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताय राधा श्याम सुंदर के प्रिय वृंदावन के वृंदा भक्तगण भक्ति शास्त्री में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पांचवा अध्याय भगवद गीता का कृष्ण भावना में कार्य उसके चौथे चरण में परमात्मा का अनुभव मुक्ति का मार्ग है उसका आज 24वें श्लोक का पाठ करेंगे। 17 से हमने कल 23 तक किया था तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। यो अंत सुखो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिर एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। योग का मतलब पहले आप देखें सह योगी वो योगी ये शब्द कहाँ है सह योगी तीसरी लाइन में वो योगी कौन सा योगी निष्काम कर्म योगी अथवा कृष्ण भावना में कर्म करने वाला योगी। सहयोगी का अर्थ क्या होगा कृष्ण भावना में काम करने वाला अथवा निष्काम कर्म योगी ठीक है। उसका अंत सुख हो वो अपना सुख अपने अंदर में ही पाता है तो बाकी शेष दुनिया वाले सुख कहाँ पाते हैं इंद्रियों के विषयों के भोग में और ये सुख पाता है अंदर आत्मा में उसका सुख है अंदर में आत्मा का। दूसरा है अंत आरामस अंतर आरामस अंतर आरामत का मतलब राम कल हमने एक शब्द पढ़ा था राम आनंद उसका आनंद भी अंदर में है उसका सुख भी अंदर में उसका आनंद भी अंदर में तथा अंतर ज्योतिर एव यः और उसकी दृष्टि अंदर ही आत्मा के प्रकाश में आत्मा के ऊपर केंद्रित है। तो तीन चीजें हैं अंदर में सुख अंदर में आराम और अंदर ज्योति के ऊपर ही उसका ध्यान टिका हुआ है। उस योगी को मिलेगा क्या ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण शब्द का अर्थ है मुक्ति वैसे निर का मतलब नहीं और बाण का मतलब दुख बाण जैसे लगता है ना बाण लगता है तो दुख होता है तो दुख से मुक्त हो जाएगा और ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ होगा ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति इसका मतलब मुक्ति प्राप्त करेगा दुखों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म भूतों का अर्थ है कि उसने अपनी पवित्र आत्मा का अनुभव किया है और परमात्मा का भी किया है ऐसे समझना चाहिए। अपने आत्मा का अनुभूति की है और परमात्मा क्योंकि ये जो विभाग परमात्मा का चल रहा है ऐसे कुछ और श्लोक पहले पढ़े थे तीसरे अध्याय में कुछ ऐसे दो श्लोक है ऐसे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है जो अंदर में सुख लेता है अंदर में आराम ऐसे हैं देखो तीसरे अध्याय में श्लोक हैं कुछ हाँ ये 18वें में है तीसरे अध्याय में दो श्लोक निष्काम कर्म योग में है ऐसे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है कहाँ है देखो जरा ढूंढो तो उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसको सब कुछ काम नहीं करेगा तो कोई आत्मरति, आत्मरति। और यहाँ उसको कहेंगे आत्माराम, एक ही बात है क्या? तीन का तो तीन के सत्रह में क्या है देखते हैं। भगवद गीता 3:17, हाँ जी 17 तो 18 दो होने चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो इसमें भी तीन चीजें हैं देखो, है ना? क्या है तीन चीजें? आत्मरति, रति का मतलब होता है सुख, आत्मा में सुख है। आत्मतृप्त, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में संतुष्ट है, इसका मतलब अंदर में ही सुख भोग रहा है। और इसके बाद में 18वां श्लोक देखे, 18 इसके से जैसा ही होगा। नैव तस्य कृतिनार्थो नैतैव कृतिन कश्चन नाद्यश्चा सर्वभूतेषु कश्चिदार्थ व्यपाश्रय से आगे। तो ये श्लोक एक जैसे हैं क्योंकि निष्काम कर्म योग का भाव है। यो अंत सुखो अंतराराम तथा अंतर। कभी हम बाहर नए लोगों में भी जाते हैं ना, पहली बार पास दूसरे देशों में भी, तो उनको पहले कहते हैं हाथ जोड़ के हमारे पीछे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहूँ, सब एक बार कह लेते हैं। हम उससे पूछते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो प्रायः कोई कहता है शांति मिली, कोई कहता है सुख मिला, कोई कहता है कि बाहर से हल्कापन हुआ। सभी लोग, चाहे वो अर्थ नहीं जानते हो कि क्या कहा, हमने रशिया में और जगहों पे भी ये प्रयोग करके देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने के बाद सब कहते हैं कि अंदर में सुख हुआ, कोई कहता है शांति मिली, कोई कहता है हल्कापन हुआ, तो प्रायः सब ऐसे कहते हैं और अर्थ निकलता है सब सुखी है। तो हम उनसे पूछते हैं फिर आप दुनिया में सुबह से शाम तक काम किसके लिए करते हो? बड़ा सुख के लिए, वो तो तुम्हारे अंदर में पड़ा है, एक मिनट में तुमको मिल गया। जब एक मिनट में भगवान के नाम का उच्चारण करने से आपको सुख मिला, सुख तो तुम्हारे अंदर में, बाहर तो है नहीं, तो जो सुख अंदर में है उसी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो सुख अंदर में है, ये हम प्रयोग करके उन लोगों को, आप कभी कहीं भी जाके करके देखिए, लोगों से पूछिएगा, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसे कहो, फिर कहो कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ। वो जो कहेंगे आप देखिए, 3-4 यही शब्द आएंगे घूम फिर के, शांति हुई, सुख मिला, हल्कापन हुआ, शोर समाप्त हो गया, ऐसे कुछ कहेंगे कुछ ना कुछ। इसका अर्थ सुख अंदर में, बाहर नहीं। तो वो सुख अंदर में कहाँ है? आत्मा में। आत्मा आनंदमय है, तो आत्मा में सुख है। तो आत्मा का सुख कहाँ से आता है? कोई कहे तो भगवान से आता है, उसका जिसका अंश है वहां से आता है। आत्मा का सुख कहाँ से आता है? परमात्मा से, जिसका अंश है। तो इसका मतलब जिसने आत्मा की और परमात्मा की अनुभूति की, वो अंदर में सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक का आप अनुवाद पढ़िए, प्रभुपाद ने क्या लिखा है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण, आपको एक बार समझाया था अंतःकरण का क्या अर्थ है। अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या है? अंदर की इंद्रियां। करण का अर्थ है इंद्री, बाहर करण, अंतःकरण, करण का माना है इंद्री। तो बाहर की इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां। तो अंदर की इंद्रियां हैं मन बुद्धि अहंकार, ये है अंदर की इंद्रियां। अंतःकरण किसको कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को, जो मन बुद्धि और अहंकार का है उसी को कहते हैं अंतःकरण। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, तो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है इसका मतलब है उसका मन शांत हो गया। उसका मन शांत क्यों हो गया अभी नहीं लिखा है। अब एक और श्लोक आप दूसरे अध्याय का, मैं समझता हूं 68 होना चाहिए, क्या है देखो दूसरे का 68 क्या है? अयुक्त है। हाँ नहीं, फिर ये नहीं है, उसमें शब्द है युक्त अयुक्त अशांत अशांतस्य कुतः सुखम, ये श्लोक का लास्ट वर्ड है, या 62 तो नहीं है 62? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यंत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक भी हम प्रचार में जब जाते हैं तो लोगों को सुख कैसे मिले उसके लिए इस श्लोक के ऊपर बात करते हैं, नए लोगों में पहली बार। अमेरिका में गए नौजवानों के बीच में, हमने ऐसी श्लोक को निकाला और कहा आप सबको सुख चाहिए, देखो लिखा है जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब अंतःकरण में सुख नहीं होगा, वो शांति नहीं होगी, अंतःकरण में शांति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। तो यहाँ अंतःकरण की शांति की बात है ना, तो वहाँ देखो जो पहला शब्द है वो उसका अर्थ है जिसका मन वश में नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है इस श्लोक का? ये कौन सा है, 62 है कि 68 है? 66 इसका अनुवाद पढ़िए। अब देखो बुद्धि स्तर नहीं है, मन स्तर नहीं है, मतलब अंतःकरण ठीक नहीं है, तो अंतःकरण में सुख नहीं है ना, मन और बुद्धि अंतःकरण हुआ, तो जिसके अंतःकरण में सुख नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। और यहां ये क्यों के परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है योग सयोग, वो योगी है इसलिए उसका मन और बुद्धि शांत है और इसलिए उसको सुख मिल रहा है। इसमें लिखा है कि अशांतस्य कुत सुखम, शांति नहीं है सुख कहां से आएगा? तो पहले शांति कहां से आएगी? जब मन एकाग्र होगा, जब बुद्धि निश्चय वाली होगी, वो कब होगी? जब परमात्मा की सेवा में लगेगी। युक्त का अर्थ है सेवा में लगना, जुड़ना। तो ये शब्द जब लिखते हो, देखो आप दोबारा पढ़ो इसको, नहीं जो अनुवाद पढ़ रहे थे आप। हाँ ये तो ठीक हो गया। अब अपने यहां है सुख, वो अंदर में सुख भोग रहा है, क्यों भोग रहा है? अब पढ़िए प्रभुपाद जी का अनुवाद। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है इसका अर्थ है मन और बुद्धि जिसका शांत हो गया है, ठीक है ना? ये रुकिए, इसका अर्थ समझ में आया ना? क्यों अंतःकरण में सुख उसको अनुभव होता है? क्योंकि मन और बुद्धि, क्यों हो गया मन और बुद्धि शांत? क्यों हो गया? परमात्मा का से संबंध स्थापित हो गया है, तो वो अंदर में सुख ले रहा है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, जो कर्मठ है, हाँ, जो कर्मठ है इसका अर्थ है जो निष्काम कर्म योगी है, जो सेवा के कार्य में लगा है। कर्मठ का अर्थ होगा सेवा के कार्य में लगा हुआ, हमारे लिए कृष्ण भावना के साथ सेवा के कार्य में लगा हुआ, अथवा निष्काम कर्म योगी, ठीक है। अब जो कर्मठ है वो अंतःकरण में ही रमण करता है। अब रमण करने का अर्थ है आनंद लेना, तो वो अंतःकरण का मतलब मन बुद्धि अहंकार, और चौथा अंतःकरण का चौथा अंग है। अंतःकरण में आज तक आप कितने बात कितने शब्द सुने हैं, अंदर की इंद्रियां क्या क्या, मन बुद्धि अहंकार, और चौथा है चेतना। वो दूषित चेतना है जिसको कृष्ण भावना भावित करनी है। ये चार चीजें अंतःकरण में होती है। आपको मालूम है इन चारों का अधिदेव है एक वासुदेव चित्त का, संकर्षण अहंकार का, प्रद्युम्न मन का, नहीं बुद्धि का, और अनिरुद्ध मन का। ये जो चार है ना चतुर्व्यूह, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चित्त का कौन है, वासुदेव, अहंकार का संकर्षण, बुद्धि का प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध मन का। तो इनकी आराधना की जाती है मन बुद्धि और इसको अंतःकरण को में आनंद की अनुभूति के लिए। तो ये चार कहां से आए, ये चतुर्व्यूह कहां से आया, भगवान श्री कृष्ण से, बलराम से। तो इसका मतलब जो भगवान से जुड़ा है उसी के अंतःकरण में आनंद होगा। अंतःकरण में आनंद क्यों हुआ, भगवान के साथ संबंध स्थापित हुआ। अब तीसरा क्या लिखा है, उसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, उसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। ये तीसरा जो है, और जो जो श्लोक में ये शब्द है, तथा अंतर ज्योति एव सः, अंदर ज्योति, ज्योति वैसे ज्योति का मतलब एक अर्थ है तो प्रकाश है, दूसरा ज्योति का अर्थ है ज्ञान, अंधकार नहीं है जहां। तो अब उसको आत्मा की अनुभूति हो गई है तो उसी अनुभूति में ही आनंद लेता है। तो यहां लिखा है प्रभुपाद ने क्या लिखा अनुवाद में, लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, लक्ष्य उसका अंतर्मुखी है। इसका अर्थ है कि वो अब परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, आत्म साक्षात्कार करने में और परमात्मा की अनुभूति करने में लगा हुआ है। अंदर ही ढूंढ रहा है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही ढूंढ रहा है। तो तीन बातें हो गई इस श्लोक में, तीन शब्द है, अंतर सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योति। अब क्या लिखा है इसके बाद, वो वास्तव में पूर्ण योगी है। हाँ, वो परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, इसका मतलब परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है, ऐसा लगना चाहिए, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है का मतलब अपने आप को ब्रह्म भूत समझता है। तो अब दो शब्द और याद कीजिए, दो प्रकार के जीवात्मा हैं, एक जीव भूत एक ब्रह्म भूत। जीव भूत बद्ध है, ब्रह्म भूत मुक्त है। जीव भूत सामान्य जीव भूत लिखा है, दूसरा है ब्रह्म भूत। तो ये हो गया ब्रह्म भूतम, क्यों मरा तो नहीं है, जीता है तो ब्रह्म भूत हो गया। अब ये जीव भूत नहीं है, तो ये दो शब्द याद करें आज, एक जीव भूत होते हैं एक ब्रह्म भूत होते हैं। जीव भूत बद्ध होते हैं और ब्रह्म भूत मुक्त होते हैं, ठीक है, जीव भूत ब्रह्म भूत। अब इसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, ऐसा आनंद उसको मिलता है जिससे सारी समस्याओं का समाधान होता है, दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। दुख है बाहर और बाहर वो जाता नहीं है, अंदर में सुख को ढूंढ लेता है। वो कहते सुख कहां से आया, बोला आत्मा के अनुभव से। वो कहते क्योंकि कर्म योगी का लक्ष्य है आत्मा का अनुभव करना, ज्ञान में आएगा, आत्मा का अनुभव करेगा। तो आत्मा में सुख को प्राप्त करना है और उसका आराम भी, एक आराम शब्द है ना, आराम, दो शब्द आराम वाले भी याद कर लो, एक आत्मा आराम हो, एक इंद्रिया राम हो। भगवत गीता में दोनों है। इंद्रिया रामों का मतलब इंद्रियों में रमण करने वाला, आत्मा राम मतलब आत्मा में रमण करने वाला। तो ये हो गया आत्मा राम, ये आत्मा में रमण करता है भाई, अंदर में रमण करता है। तो अंदर क्या है, आत्मा है, उसमें रमण करता है, ये आत्मा राम हो गया। संसार क्या है, इंद्रिया राम। नहीं, आत्मा नाम है जो भक्त होते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं। भगवान को भी आत्मा राम कहते हैं, आपत काम कहते हैं। आत्मा राम मतलब जो अपने अंदर में सुख को भोगे, अपने में सुखी है, बाहर का सुख नहीं चाहिए जिसको, उसको कहते हैं आत्मा राम, अपने आप में संतुष्ट। तो भगवान के लिए भी और भक्तों के लिए ज्यादा है। कहाँ, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, आत्मा राम वाला, जिसके ऊपर महाप्रभु ने बहुत सी व्याख्या की है दो बार। वो आत्माराम मुनियों के लिए, आत्माराम मुनियों निर्गंता, वो साधुओं के लिए है जो आत्मा में रमण करते हैं। तो आत्माराम भगवान के लिए जब है ना, तो उसका रसिक अर्थ है राधा, जिसकी आत्मा है उसमें रमण करता है, उसको आत्माराम कहते हैं। भगवान आत्माराम क्यों है, क्योंकि राधा रमण है, वहां उनकी आत्मा है राधा। यस्य आत्मा राधा, राधा के साथ रमण करे वो राधा रमण, वो आत्माराम। वहां अर्थ ये होता है, भगवान के लिए होगा तो राधा रमण होगा, और हमारे लिए होगा तो आत्मा में आनंद लेने वाला होगा। अब तो राम नाम ही आ रही है, एक रामानुज शब्द है, उसका अर्थ क्या है, लक्ष्मण। और संसार राम का, रामानुज का सहारा लोगे तो राम मिलेगा, इसका मतलब लक्ष्मण गुरु है, उसका सहारा लोगे तो राम मिलेगा। संसार है कामानुज, कामानुज का मतलब काम का छोटा भाई, कौन है, क्रोध। संसार है कामानुज, काम का अनुज है, काम के पीछे काम एश क्रोध एश, तो कामानुज हो गया ना, काम के पीछे खड़ा है। राम के पीछे लक्ष्मण, काम के पीछे क्रोध। आपको कहाँ जाना है, राम के पास जाना है कि काम के पास जाना है, राम पे जाना है। तो आत्मा राम, एक इंद्रिया रामो, इंद्रिया राम भगवत गीता में है, एक श्लोक ढूंढना मिलेगा, इंद्रिया रामो। हाँ, देखा था कहीं, आया था कभी आपकी नजर में, आया शब्द इंद्रिया रामो, भगवत गीता में है इंद्रिया राम शब्द, आप ढूंढना। तो फिर लिखते हैं, और उसकी दृष्टि भी आत्मा के ऊपर केंद्रित है, यह है तीसरे शब्द का अर्थ। तीसरा शब्द क्या है, अंत ज्योति एवसा, उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर केंद्रित है। ऐसा निष्काम कर्म योगी अपने स्वरूप को, शुद्ध जीव आत्मा उसको कहते हैं भूत, ब्रह्मभूत, वो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करता है। उसको क्या प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत स्थिति, और फिर ब्रह्म प्राप्त होता है, इसका मतलब परमात्मा प्राप्त होता है, और तब वो मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अब श्री प्रभुपाद जी का हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवाद, ठीक है, तात्पर्य। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हमको अंदर से आनंद नहीं आएगा, तब तक बाहर से तुच्छ सुखों को कैसे छोड़ सकते हैं। ये पहली लाइन है प्रभुपाद जी की, ऐसा है ना, यही लिखा है ना, अर्थ यही है ना। जब तक अंदर में सुख की अनुभूति नहीं हुई, तब बाहर के हल्के फुल्के तुच्छ सुख कैसे छोड़ेंगे। तो बाहर का हल्का फुल्का तुच्छ सुख क्या है, इंद्रियों का भोग, वो कब छोड़ेंगे, जब अंदर का। अब दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, वो जब बोलोगे तब ये लाइन सही समझ में आएगी। कौन सा, हाँ, हायर प्लेस, रसो वही रसवर्धम श्लोक निकालो ये, रसो वर्जम रसो वे परम दृष्टवान निवर्तन्ते। ये श्लोक, ये लाइन उस श्लोक के आधार के ऊपर समझनी पड़ेगी। रसो वर्जम रसो अप्यास्य परम दृष्टान निवर्तन्ते। परम दृष्टवा, परम श्री कृष्ण दृष्टवा, जिसने कृष्ण का दर्शन किया वो फिर तुच्छ संसार के भोगों को देखेगा भी नहीं। ये लाइन जो पहली प्रभुपाद जी इसके सामने लिखो के रसो वही परम दृष्टान निवर्त, तब समझ में आएगा ये लाइन। 259 वहां परम रस का अर्थ है श्री कृष्ण। ये आपने एक रामानुज आचार्य की कथा सुनी है, रावण आचार्य श्रीरंगम की सवारी जा रही थी और छाता से पीठ दे के भगवान को और अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा था, तो रामानंद को आश्चर्य लगा, बोला ऐसे क्यों, बड़ी सुंदर है, इसकी आंख जैसी किसी की नहीं है। बोला तुमने को इससे अच्छी दिखाऊं तो उन्होंने भगवान रंगनाथ को प्रार्थना की। रंगनाथ ने केवल अपनी आंख दिखाई और आंख का इतनी सुंदरता दिखी कि वो बड़ा भक्त हो गया धनुर्दास, उसका नाम है धनुर्दास, बड़ा भक्त हो गया। तो परम दृष्टवा का उदाहरण कभी देना है तो ये कथा बोलने का तो अच्छा है कि भगवान के दर्शन करने के बाद किसी और का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, ये पहली लाइन का अर्थ होता है, होता है ना प्रचार में, इसको ये बोलना पड़ेगा साथ में। अब लिखा है मुक्त जीव वास्तविक अनुभव से अंदर में आनंद को पाता है, वास्तविक अनुभव से सुख को भोगता है मुक्त जीव, ऐसे लिखा है ना, मुक्त जीव वास्तव अनुभव से सुख को भोगता है। इसको कैसे समझाएंगे, मुक्त जीव अंदर में अनुभव से सुख का आनंद लेता है, अंदर में सुख का आनंद लेता है कौन, मुक्त जीव, कैसे, अनुभव से। एक महात्मा था, उसका हड्डी टूट गया था, हड्डी टूट गया था, अंदर बैठा था, एक आया बोला महाराज अकेले बैठे हो, बोला तुमने आके अकेला कर दिया, तुम आए तब अकेला हो गया, पहले भगवान के साथ बैठा था, तुम आए तो अब अकेला हो गया, भगवान तो चला गया तेरे आने से। तो मुक्त जीव जो है वो भगवान से जुड़े बैठे होते हैं, कोई दुनिया वाला आता है तो कहते अकेले हो गए, हम तो कोई आता है तो कहते अकेले नहीं है, लेकिन साधु अकेला भगवान से जुड़ा रहता है। तो आपको कोई ऐसा सुख मिला है वास्तव में अनुभव का, जिसको आपने बड़ा रस लिया हो उसका, ऐसा कोई सुख की ऐसी अनुभूति है, और आप सबको है ये मैं कहता हूं, क्योंकि नहीं होती तो अभी तक आप मंद भक्ति में टिके नहीं रह सकते। भक्ति में इसलिए टिके हैं कि सबको अनुभव है, कभी कीर्तन में हुआ हो अंदर में ऐसा कीर्तन में आनंद आया, फिर कभी नहीं आया, सालों तक नहीं आया, लेकिन एक बार आया, कभी प्रसाद में ऐसा सुख मिलता है ऐसा कभी दोबारा मिला ही नहीं, कभी, सदा नहीं, कभी 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 भगवान का दर्शन करते करते इतने आनंद में हो जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन सबको होता है, मुक्त को रोज होता है, हमको कभी कभी होता है। और इसलिए भगवान बड़े चालाक हैं, वो थोड़ी सी झलक दिखा के और फिर परेशान करते हैं कि अब ये पक्का हो जाए भले। ऐसा कोई पूछे के उदाहरण दो तो देंगे, नारद का, अंदर में देखा भगवान को और फिर नहीं दिखाई, तो नारद का उदाहरण याद देंगे, अनुभव से उसने देखा, तो ये लाइन को समझाना हो तो नारद का उदाहरण देना, संतों का संग किया, सेवा की, तो उसको समय आने के ऊपर अंदर में आनंद का अनुभव हुआ, वो वास्तविक आनंद है। ठीक है ना, ये लाइन भी समझ में आई। इसलिए वो कहीं भी अकेला बैठ के सुखी रह सकता है, कहीं भी अकेला बैठ के सुखी रह सकता है। प्रभुपाद जी यहां से गए तो कोई साथ में नहीं था ना, अकेले गए थे ना, साथ में जितना चैतन्य था और भागवत था। कहीं भी बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन कर रहे थे, अपने आप लोग आ गए। कोई मंदिर नहीं बना हुआ था, पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन कर रहे थे। ये इस लाइन को, अब इस लाइन को पढ़ो, कहीं भी वो शांत बैठ के मौन बैठ के, कहीं मौन बैठे कि भगवान के, भगवान के कार्य में लग सकता है अंदर से। अब ये लाइन बहुत मुश्किल है, बाहर से मौन, अंदर में आनंद लेता है। किसका? एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जीवन के कार्यों का अंदर से आनंद लेता है। तब आपको भक्ति रसामृत सिंधु में जहां ध्यान है उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। एक दक्षिण भारत का भक्त, वो भगवान की पूजा करता, सब नदियों का पानी लाता। ये उस वो स्थिति की बात हो रही है कि जो ऐसा भक्त है कहीं भी बैठा है, भगवान की पूजा कर रहा है, कुछ पैसा नहीं है कोई बात नहीं, धन नहीं है कोई बात नहीं, सारे नदियों का सोने का सिंहासन बनाएंगे, खर्चा कौन सा लगता है, लेकिन उस स्थिति पे होना चाहिए। ये मानसिक स्थिति है, ये मन, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की एक बार थोड़ा सा पेट खराब हो गया तो वैद्य को बुलाया, वैद्य जी ने कहा खीर खाइए। सबने कहा ये तो छाछ भी नहीं पीता है, एक दोने से ज्यादा, महाराज खीर कैसे खाइए, बोले इससे पूछो, हमारा तो डॉक्टर बोलता है। वैद्य भेजा था, गोस्वामी ने भेजा था, वल्लभ आचार्य के गोस्वामी थे, उन्होंने कहा ये बड़ा सिद्ध महात्मा है हमारा वैद्य, जाओ उसको देख के आओ। पूछा कि महाराज आप छाछ पीती हो, ये खीर तो कह रहा है वैद्य, बोला खाई बड़ी अच्छी बनाई थी और रूप मंजरी ने ललिता को दी, ललिता ने राधा को दी, प्रसाद हमको दिया, हमने पाया। अब पाया था मानसिक राज में लेकिन अपच हो गया शरीर में। तो ये सारे शरीर के कार्य करेगा चुप के बैठ के, बाहर लगता है कुछ नहीं करता लेकिन अंदर में सारी पूजा कर लेता है। ये मुक्त जीव की स्थिति, अंदर में सुख मिलना है ना, इसलिए ऐसा मुक्त जीव बाहर के भौतिक सुख में कोई रुचि नहीं रखता और इस स्थिति को कहते हैं ब्रह्मभूत, ऐसे लिखा है। और ये ब्रह्मभूत 18:54 के तात्पर्य में पढ़ लो, ऐसे लिखा है क्या? ये तो हो गया, इसके बाद क्या लिखा है? हाँ फिर पर ये ब्रह्मभूत शब्द है, तब प्रभुपाद हम, आप याद करो कहाँ में, 18:54 में है ब्रह्मभूत का श्लोक, ब्रह्मभूत श्लोक वहां है। इसका मतलब जीते जी मुक्त हो गया, मरने के बाद नहीं। तो इसमें हमने आज सीखा क्या कि ये है मुक्त अवस्था, कृष्ण भावना की मुक्त अवस्था, जिसमें अंदर में ये जैसे मानसिक चिंतन में सुख है, ये मन के स्तर के ऊपर, अंतःकरण मन में आता है ना, मन कहाँ है, अंतःकरण में है तो अंतःकरण से ही सेवा करता है। अब 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषि क्षीण कल्मषाः क्षिणद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। ऋषि क्षीण कलमशा, पहले ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि
अंदर से क्रियाशील रहने वाले।
क्या लिखा है प्रभुपाद शब्द अर्थ में?
अंदर से क्रियाशील रहने वाले,
अंदर से क्रियाशील रहने वाले ऋषि, उसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं सीयर। इसका मतलब भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, त्रिकाल दृष्टि है और अंदर से कार्य में लगे होते हैं। इसका अर्थ है जैसे हम पहले पढ़ के आए वो मानसिक चिंतन में ही सब सेवा करते हैं ऋषि। क्षीण कलमशा का अर्थ है उनके सारे कलमश नाश हो गए। ऐसे ऋषि, तो इस ऋषि को आगे ले जाएंगे तो वही है, कौन सा? अंतरारामस, अंतर सुखो, अंतर ज्योति, वो ऋषि हो गया। क्योंकि अंदर में सब सुख ले लिया ना, तो उस ऋषि के सारे कलमश नाश हो गए। पहले सारे कलमश नाश हो गए, बोला और क्या हुआ? छिन्न द्वधा, द्वधा का मतलब क्या है? द्वंद सारे छिन्न भिन्न हो गए। और तीसरा है यत आत्मानः, उसका मन वश में है। यत का मतलब यतनशील, जिसका मन संयम में है। तो तीन बातें हो गई। क्या तीन बातें हुई? अज्ञानता नाश हुई, कलमश का मतलब अज्ञानता नाश हुई, ऐसे ऋषि जिनकी अज्ञानता चली गई है, जिनके द्वंद चले गए हैं, जिनका मन वश में है, वो क्या करते हैं? सर्वभूत हिते रताः, सारे प्राणियों के हित का कार्य करते हैं। वही सबके हित का कार्य करते हैं, प्राणी मात्र के हित का कार्य करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः, लगे रहते हैं दूसरों के भलाई के काम में लगे रहते हैं। अब रह गया एक शब्द, उनको प्राप्त होता है ब्रह्म निर्वाण, मुक्ति प्राप्त होती है, वो संसार के दुखों से मुक्त होके भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये श्लोक कहता है बहुत से लोगों ने साधन से सिद्धि को प्राप्त किया। ये श्लोक बताया बहुत से लोगों ने साधन से सिद्धि को प्राप्त किया, बहुत से लोगों ने किया है ऐसे। उनका कहने का मतलब ये श्लोक उदाहरण दे रहा है कि बहुत से लोग अंतराराम हो गए, अंतर सुखो हो गए, ब्रह्म निर्माण प्राप्त कर लिया। ऋषि को कहते हैं सत्य के, जिसकी दृष्टि सत्य के ऊपर है, सत्य को जानने वाला ऋषि, सत्य का जानने वाला, उसके सारे संशय समाप्त हो गए, द्विधा चली गई। द्विधा के दो अर्थ हो गए, क्या? द्वंद और संशय। द्विधा का मतलब मन में दो बातें समाप्त हो गई, द्विधा चली गई, द्वंद चले गए, अज्ञान चला गया क्रमशः। मन संयम में है, सबके हित में लगा है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी और मुक्त होगा। अब श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी श्लोक में कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबके हित के कार्य में लगा होता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की परिभाषा क्या है? किसको हम कहेंगे कृष्ण भावना भावित है? उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जब वास्तव में उसको ये ज्ञान हो जाए कृष्ण सबके स्रोत हैं, सब चीजें कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं, वो सबसे कृष्ण से निकलती है, तब वो सबके हित की बात करेगा। क्योंकि वो सभी कृष्ण से निकल रही है, हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो सबसे, तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो सबकी सेवा करेंगे। अब समझ में आई है, दूसरी लाइन समझ में आई? पहला प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबकी भलाई का कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है? सब का स्रोत कृष्ण है, जो कुछ है वो कृष्ण से निकलता है, तो कृष्ण से संबंधित है, तो सबका भला करना चाहिए क्योंकि सभी कृष्ण के हैं। ये बात हो गई। अब ये दो लाइनों में प्रभुपाद ने क्या कहा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबका भला करता है क्योंकि सबको कृष्ण से जुड़ा हुआ समझता है, सभी कृष्ण से जुड़े हैं, सबका स्रोत कृष्ण है। शब्द हुआ स्रोत लिखा है आपके पास, फाउंटेन हेड के लिए अंग्रेजी में क्या लिखा है, फाउंटेन हेड, हाँ उद्गम, उद्गम ठीक है, स्रोत स्रोत उद्गम एक ही बात है, सबका स्रोत श्री कृष्ण है, बहुत अच्छा शब्द है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में सबका हित करना है तो अहित है क्या दुनिया का, भाई दुनिया में क्या खराबी है कि उसके हित की जरूरत पड़ गई। तो प्रभुपाद लिखते हैं दुनिया के दुख का कारण है कृष्ण से बेमुख होना। क्या लिखा है, दुनिया के दुख का कारण है, हाँ वो बस पहले वो बाद में आते हैं, कृष्ण से बेमुख होना। तो कृष्ण से बेमुख होना उसमें तीन बातें लिखी है और ये तीन बातें हैं 29वें श्लोक के शब्द, इसी अध्याय के 29वें श्लोक में तीनों शब्द हैं। पहला शब्द है भोक्ता, देखो है भोक्ता, और तीसरा दूसरा शब्द है सर्वलोक महेश्वर है, और तीसरा है सौहृद, तीनों है ना। अब ये जो तीन शब्द प्रभुपाद जी ने यहां लिखे हैं वो 29 श्लोक से लिए हैं, ठीक है। संसार दुखी क्यों है, उनको सुखी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से बेमुख है। पहले सीधा लिखो बेमुख है, बेमुख है इसलिए लिखो कि हमने पहले भी चेतना चरितमृत में भी पढ़ा है, कृष्ण भूलिया जीव बाहर मुख भोग वांछा करे निकट माया झापटिया धरे। तो संसार में दुख का कारण क्या है, कृष्ण से बेमुख। तो कृष्ण क्या है, तब कृष्ण के तीन बातें हैं, तब कृष्ण क्या है, भोगता है, परम नयनता है, सौहृदय है। वही शब्द लिखो जो श्लोक में है वो अच्छे लगेंगे, क्या लिखोगे, भोगता है, सर्वलोक महेश्वर है और सौहृद है, ये तीनों शब्द जैसे के जैसे पढ़े हैं वैसे लिखे हैं प्रभुपाद ने। तो उसका और कोई हिंदी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण शब्द है श्लोक के, भगवान के वाक्य है। क्या है, भोक्ता, भोक्ता फिर सर्वलोक महेश्वर और सौहृद, तीनों शब्द समझ में आए। तो ये है लोगों में कृष्ण के विषय में बेमुखता का कारण। इसलिए जो संसार में इस चेतना की जागृति करता है वो ही सबसे बड़ा कल्याण का कार्य करता है, समाज कल्याण का सबसे उत्तम कार्य भूले लोगों की चेतना को पुनः कृष्ण के विषय में तीन बातें समझाना। कौन सी, कृष्ण भोगता है, कृष्ण परमेश्वर है और कृष्ण सौहृद है। अब प्रभुपाद लिखते हैं आप ऐसा समाज के कल्याण का कारण कर ही नहीं सकते जब तक मुक्त नहीं हो। देखिए पढ़िए, जब तक ब्रह्मभूत के स्तर पे हो नहीं हो तब तक ये कार्य नहीं कर सकते। स्वयं मुक्त ब्रह्मभूत समझ लो सीधा, जब तक ब्रह्मभूत ना हुई हो तब तक ये कार्य नहीं कर सकते। और प्राय आपको प्रभुपाद ने प्रचार किया प्राय पाश्चात्य देश में, कोई भारतीय नहीं था, सब पाश्चात्य देश के थे, और उनको प्रचार किया क्योंकि मुक्त अवस्था में थे, सबका हित करने की इच्छा थी। हमारी अभी तक हम जो प्रचारक हैं ना, वो सबके हित का नहीं सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा घूम फिर के कहते हैं भारतीयों का हित करे, हिंदुओं का हित करे, ऐसे हमारे दिमाग में आता है। आप पुस्तक वितरण करने जाते हैं किसी के दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम लिखा हो जाते हो, नहीं जाओगे, नहीं जाते हैं ना, ईसाई का नाम लिखा है नहीं जाते, और रशियन को भेजो चला जाएगा, वो चला जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सबको भगवान का नाम देना है। तो अभी तक हमारी चेतना वो स्थिति की नहीं है। अब हम सर्वभूत हिते रता के स्तर पे नहीं है, क्यों? क्योंकि मुक्त नहीं है, ब्रह्मभूत स्तर पे नहीं है। तो ब्रह्मभूत स्तर पे आने के लिए क्या करना है? क्या अभी विचार है ना, भक्ति योग है ना, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जब लिखते हैं कि जब तक उस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक सबका भला करने का नहीं कर सकता है कोई। ये कहने से एक बात सिद्ध होती है कि जो लोग रोज कहते हैं हम समाज कल्याण करते हैं, वो तो बिल्कुल मूर्ख है, मुक्त है नहीं तो क्या करेंगे? अब प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की प्रभुता, उसकी प्रभुता के ऊपर कोई संदेह नहीं है। प्रभुता लिखा है, क्या लिखा है? सुप्रीमेसी के लिए क्या शब्द लिखा है? सर्व सर्वोच्चता प्रभुता, ठीक है। और क्यों नहीं है ये? क्योंकि वो सब पापों से। तो ये कहां, ये क्यों प्रभुपाद ने शब्द डाला, कहां से लाए? सब पापों से मुक्त है, कहां शब्द है? ऋषि सार्व क्लमशा, जो कलमश है ना वो है, ऋषि क्षीण कलमश है, वो शब्द है ये, क्योंकि वो सारे कलमश से पाप से मुक्त है। और ये है स्थिति दिव्य प्रेम की। अब प्रभुपाद जी ये भक्तों की बात करके अब संसार के ऊपर आते हैं। जो केवल किसी को रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, दवाई देते हैं, वो वास्तव में उनका कोई ज्यादा सहायता नहीं करते, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है। ये जो थोड़ी देर के लिए शरीर और मन के लिए संतुष्टि के कार्य है, परंतु आत्मा का इसमें कोई उधार नहीं होता। और वास्तविक सबके संसार में जो वो दुख भोग रहा है उसका कारण है भगवान के साथ संबंध को भूल गया है। और फिर लास्ट लाइन में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? वास्तव में जो मुक्त आत्मा होता है भौतिक शरीर भले जाल में फंसा हो। तो ये आपका प्रश्न था कल इसके ऊपर, क्या प्रश्न था? तो विश्व कल्याण कैसे करना है? आत्मा का कल्याण करना है। सबसे बड़ा कल्याण है लोगों को कृष्ण भोगता है, कृष्ण महेश्वर है सर्वलोक का, कृष्ण सौहृदय, ये समझाना, क्योंकि कृष्ण को भूलने के कारण संसार में सब दुखी है, ठीक है। ये आपके प्रश्न का उत्तर ये होगा। प्रभुपाद ये कथा इसके ऊपर बताया करते थे कभी कि बहुत बड़े किसी धनी सेठ का बेटा 4-5 साल का गुम हो जाए, किसी गया मेले में, किसी मेले में गया और गुम हो गया। अब क्या करेगा छोटा बेटा? भूखा है, रोएगा, तो कोई रोटी खिलाएगा, कोई कपड़ा देगा, खांसी हो गई तो कोई दवाई देगा, और कोई सेवा लेगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? किसी ना किसी की सेवा करेगा। तो ऐसे बहुत से लोग उसकी सहायता तो कर ही रहे हैं, कोई रोटी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, परंतु उसके बाप का कोई जानकार उस बच्चे को देख ले, कहे कि तुम दुख क्यों भोग रहे हो, तुम भूखे प्यासे क्यों हो, तुम्हारा पिता तो बहुत बड़ा धनी है, रईस है, चलो तुम्हारे को पिता के पास ले चलो, तो ये है वास्तव में कल्याण का कार्य। बाप से बिछड़े को बाप से मिलाना बड़ा कार्य है कल्याण का, या उसको रोटी कपड़ा देना या दवाई देना अच्छा है? तो ऐसे सारे जीव हम भगवान श्री कृष्ण का अंश हैं, संसार में भटक रहे हैं। भगवान का प्रतिनिधि जो गुरु वर्ग आता है वो हमको भगवान से मिलाता है, तभी हमारा कल्याण होता है। तो ये कहानी प्रभुपाद ने बताई, विश्व कल्याण उनका भगवान से संबंध स्थापित करने से। आत्मा का कल्याण करना है, शरीर का कल्याण करो ना करो क्या फर्क पड़ेगा, करना चाहिए वो भी अच्छा है, परंतु वो वास्तव में उत्तम कल्याण नहीं है। तो कृष्ण भावना अमृत संघ सबसे बड़ा विश्व का कल्याण। प्रभुपाद को किसी ने कहा, इतने बड़े खर्च करके मंदिर क्यों बना रहे हो, स्कूल बनाओ। तो प्रभुपाद का, ये मंदिर कौन कहता है, ये तो विश्वविद्यालय है। ये जो आत्मा के ज्ञान से वंचित, परमात्मा के प्रेम से जो मुख मोड़े हुए हैं, उनके शिक्षा के केंद्र हैं। हमारे मंदिर शिक्षा केंद्र है। किसी ने कहा, प्रभुपाद क्यों इतना खर्चा करते हो मंदिरों पे, अस्पताल बनाओ। बोले, कौन कहता है मंदिर, ये भौतिक और मानसिक रोगियों की चिकित्सा का बड़ा चिकित्सालय है। हमारे भक्त बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हैं और इनकी चिकित्सा करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसको भौतिकता के समाज कल्याण से उत्तम मंदिर के कार्य को मानते थे। मंदिर में दोनों उत्तम कार्य होते हैं। एक अपने बेटे के साथ प्रभुपाद जी के पास आया और कहा, अपना मंदिर क्यों बनाते हैं, इतने साल पहले तो 5,000 मंदिर तो पड़े हैं वृंदावन में, अपना क्यों बनाते हो? तो प्रभुपाद ने उसको क्या कहा, ये कौन है? बोला, मेरा बेटा है। बोला, इतने सारे लड़के घूमते हैं, फिर अपना बेटा क्या जरूरी है? तत्काल उत्तर प्रभुपाद जी का ये था, इतने सारे लड़के घूम रहे, फिर अपने बेटे की क्या जरूरत है? तो इस श्रृंखला का पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यतचेतसाम अभिद्दो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, इसका मतलब है परमात्मा में, परमात्मा को प्राप्त करेगा, परमात्मा में मुक्ति को प्राप्त करेगा, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। अभी तो सब प्रकार से मुक्ति प्राप्त करेगा। किसमें? परमात्मा। कब करेगा? तब पहली लाइन पढ़िए, कब करेगा मुक्ति प्राप्त सब प्रकार से? जब काम क्रोध को विशेष रूप से उससे मुक्त हो गया। विमुक्त का मतलब विशेष मुक्त, दोबारा नहीं आएंगे। तो ये काम क्रोध कहां मिले थे आपको? पांचवें अध्याय में कल मिले थे कि नहीं? एक जगह शक्नोति यशोरम प्राक्सर काम क्रोध उद्भवम वेगम। तो इसने काम क्रोध के वेग को सह लिया, उससे मुक्त हो गया। तो पहले क्या काम किया? काम क्रोध से वेग से मुक्त हो गया, ठीक है। दूसरा क्या काम किया? यतीना, यतनशील है, बड़ा प्रयास कर रहा है। क्या करने का? यत चेत साम, अपने मन को वश में करने का प्रयास कर रहा है, अपने मन को वश में करने का। और क्या प्राप्त किया है उसने ये करके? काम क्रोध को जीत कर उससे मुक्त होकर प्रयास से मन को वश में कर लिया, उससे उसको मिला क्या? विदित आत्मा नाम। विदित का मतलब जान गया, विदित का मतलब जानना, विद्वान, आत्मवान का मतलब आत्म नाम, अपनी आत्मा को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, आत्मा के स्वरूप को जान गया। जिसके पास धन होता है उसको क्या बोलते हैं, और जिसके जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया बोलता है उसको बोलते हैं आत्मवान, और जो पापी है उसको बोलते हैं अघवान। आगे कहते हैं पाप को अघवान, धनवान, आत्मवान, और जिसके पास भगवान है उसको कहते हैं भाग्यवान। तो भाग्यवान और धनवान एक बात नहीं है, भाग्यवान, धनवान, आत्मवान, अघवान, बेईमान। तो इस श्लोक का अब अनुवाद पढ़िए जरा। समस्त भौतिक इच्छाओं का क्या, या कौन सा शब्द है, काम, काम का मतलब सब भौतिक इच्छाएं, ठीक है। जो आत्म स्वरूप, इसका मतलब विदित आत्मा नाम, और आत्म संसिद्धि के लिए, सम्यक सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, हाँ,
निरंतर प्रयास करते
यत यति नाम यत चेतसाम, ये उस शब्द की परिभाषा है। हाँ, फिर अभी तो ब्रह्म निर्वाण, ये इसकी परिभाषा है। तो ऊपर जो श्लोक में शब्द है वो प्रभुपाद ने कहाँ लिखे हैं अनुवाद में, इसको ढूंढो पहले, तो आपको समझ में आएगा कि आप श्लोक समझ के पढ़ रहे हो। आप दोबारा पढ़िए।
जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित,
ये पहली लाइन हो गई, ठीक है।
जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं,
ये दूसरी और चौथी लाइन का अर्थ है। दूसरी वर्तते विदित आत्मा नाम स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयास करता है, यति नाम यत चेतसाम, अपने मन को संयम करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये लिखा है ना, ये तीसरी, ये दूसरी और चौथी लाइन है। अब है लास्ट में है तीसरी लाइन, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ये उस शब्द की परिभाषा है, ठीक है। ये चार चार लाइन में कैसे समझ में आया, ठीक है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, बड़ी बोला, ऐसे भक्त की परमात्मा सेवा करते हैं, उल्टी बात है, भक्त भगवान की सेवा करते, ऐसे भक्त की परमात्मा सेवा करते, मतलब सहायता करते हैं, हर प्रकार से परमात्मा उसकी सेवा करते हैं। किसको, जो यति नाम है, जो प्रयासशील है। फिर एक श्लोक लिखते हैं जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, वो श्लोक है पद्म पुराण का, मैं पढ़ रहा हूं। दर्शन ध्यान संस प्रशय मत्स्य कूर्म व्यंगमा स्वान्यापत्यानि पुष्णन्ति तथा अहम अपि पद्मजा। ये श्लोक है आपके पास, है ना। अब देखो पद्मजा किसको कहेंगे, पद्मजा, जा का मतलब जन्म लिया, पद्म का मतलब कमल, कमल के ऊपर जन्म किसने लिया, ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा को कहा जा रहा है, पद्मजा का मतलब ब्रह्मा, ठीक है। हे ब्रह्मा जी, दर्शन ध्यान संस्पर्श, तीन शब्द है। दर्शन का मतलब नजर डालना, ध्यान का मतलब ध्यान करना, और संस्पर्श का मतलब छूना, छूने से, हाथ लगाने से। तो पहला मत्स्य, दर्शन से मत्स्य, ध्यान से कूर्मा, और संस्पर्श से व्यंग माह का मतलब पक्षी, पक्षी, हाँ, व्यंग माह पक्षी को कहते हैं। स्वान्य अपने अपने, अपत्यानी पुष्णंती, अपने अपने बालकों का जो जन्म लेना है उनका पोषण, ऐसे ही मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। ये भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। मछली ऐसे अपने अंडों को नजर से नजर में रखती है, कछुआ ध्यान करता है जल में बैठा हुआ, और पक्षी स्पर्श करता है। ऐसे मैं अपने भक्तों का अपने धाम में बैठा हुआ भी उसका पोषण करता हूँ, रक्षण करता हूँ। तो ये उदाहरण दिया रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा रानी ऊपर से चुनरी से सूर्य के प्रकाश से उसको गर्मी से बचा रही थी। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कुटिया बना लो, या हम सेवा करने आए हैं राजा रानी की, सेवा लेने के लिए नहीं आए, कुटिया बना लो। जो संत जो भक्त प्रयासशील है, जो भक्त प्रयासशील है, यत्नशील है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो संत जो भक्त क्रियाशील है, निरंतर मुक्ति के लिए मुमुक्षु है, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना में है, वो सबसे महान है। तो इसका भाव क्या है प्रभुपाद जी का, ये लाइन क्यों लिखी है प्रभुपाद ने, शुरू कैसे क्यों ऐसे क्यों किया है? यति शब्द की परिभाषा लिखी है, यति शब्द की, यति का मतलब यत्नशील, सावधान, प्रयास में लगे हुए, कृष्ण भावना में, वो सबसे उत्तम है। फिर भागवत का एक श्लोक लिखा है 4:22-39, यद पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या कर्माश्याम गृहितम उदग्रंत्यन्ति संता धद्वाद नरिक्तमत्यो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणास्तम अरणम भज वासुदेवम्। यद पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या, यद पाद पंकज भगवान के चरण कमल, प्लास बहुत कोमल है, नए नए पत्ते निकलते हैं ना ऐसे प्लास, विलास भक्त्या उसमें जो भक्त निरंतर लगे रहते हैं उनको लाभ क्या होता है? कर्माश्याम ग्रथिम उदग्रंथी संत, ऐसे संत कर्मों की जितने भी गांठें हैं और इच्छाएं हैं वो सब छिन्न भिन्न कर देते हैं। तद्वन्न रिक्तमत्यो यत्योपि रुद्ध, बड़े बड़े यति प्रयास करते हैं ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञानियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन भक्त भगवान के चरणों का सेवा करने से कर लेते हैं। श्रोतो गणास्तम अरणम, ये भवसागर में, अरणम भवसागर में है, भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव का भजन करो, इसका पढ़ो, इसका अनुवाद पढ़ो, श्री प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? इंद्रियों को समर्थ में, बड़े बड़े साधु भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। हाँ जी,
जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करते,
तो सकाम कर्म की तीव्र इच्छा क्या है, कौन सा शब्द है श्लोक में? कर्माश्याम, कर्माश्याम जो शब्द है, सकाल सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा का परिभाषा है। कर्माश्याम सबसे खतरनाक है, कर्माश्याम को नष्ट कर देता है। हाँ जी,
और भगवान के चरण कमलों की सेवा करते दिव्य आनंद में लीन रहते,
भवसागर को पार कर लेता है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ये अनुवाद के उपरांत आप देखिए कर्माश्या की परिभाषा लिख रहे हैं, पढ़िए, अब जो लाइन है ये है कर्म आशय की परिभाषा। अब इसके बाद पढ़ो परिभाषा। ये प्रभुपाद ने जो लिखा है ये है कर्म आश्याम रक्त मत्यो साधु, उसकी परिभाषा है। अब उसकी तुलना की है किससे, देखो, परंतु एक भक्त निरंतर भगवान की सेवा कृष्ण भावना में करता है, वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार किया हुआ है और तत्काल परम में मुक्ति प्राप्त करेगा। ये हुई तुलना दोनों में, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान है आत्म साक्षात्कार का, इसलिए वो सदा ही समाधि में रहता है। और इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, प्रभुपाद ये श्लोक ऐसे दिख रहे हैं। दृष्टि से, ध्यान से और स्पर्श से मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का पोषण करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी मैं अपने भक्तों का पोषण करता हूं। और प्रभुपाद जी हर एक शब्द को सिखाते हैं। मछली केवल देखती है, कछुआ ध्यान करता है, पानी में रहता है, स्वयं पानी में अंडा और उसका ध्यान करता है, और पक्षी कहते कछुए के अंडे धरती पे और स्वयं पानी में, और ध्यान करता है तो अंडे अपने आप फूट जाते हैं। और ऐसे कृष्ण भावना में जो भक्त है वो भगवान से भले बहुत दूर है, भगवान अपने धाम में बैठे हुए, वो भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान की सेवा में लगेगा कृष्ण भावना में। प्रभुपाद ने भक्त का प्रयास लिखा है और बलदेव विद्याभूषण का है भगवान भक्त की चिंता करते हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण जो तीनों हैं उसमें मछली, कछुआ और पक्षी अपने अंडे तो कुछ नहीं कर सकते, बेचारे क्या करेंगे, अंडे जब फूटे ही नहीं है तो भक्त बेचारा क्या करेगा, भगवान स्वयं उनका पोषण करते हैं, भगवान उनका पोषण करते हैं, ये इसका भाव है। अब निर्वाण शब्द की प्रभुपाद जी परिभाषा लिख रहे हैं। अब जो लाइन लिखी है ये निर्वाण की परिभाषा है, क्या लिखा है, तो निर्वाण, निर्मन नहीं, बाण मन कष्ट, तो निर्वाण की अर्थ वह ब्रह्मभूत के स्तर पे जाएगा तो निर्वाण समाप्त, दुख तकलीफ कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यहाँ अपने इस कथा को पूरा करते हैं, 10 मिनट हैं, कल हमने कहा था एक श्लोक को अपनी इच्छा से कौन समझाएगा, 3 श्लोक बचते हैं, कल ये अध्याय पूरा करेंगे और इस अध्याय की पूर्णावति कल कर देंगे, और 6ठा अध्याय फिर भगवान की कैसे कृष्ण की इच्छा है, गर्मी भी बहुत है आगे, जैसे सबकी सलाह होगी, लेकिन 6 पूरे करेंगे तब आपको फिर छुट्टी देंगे परीक्षा की, ठीक है। तो आज एक प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया, सबसे अच्छा प्रभुपाद के शब्दों में सबके कल्याण का कार्य क्या है, ये समझ में आ गया। अब आप में से कौन आज